पृष्ठ संख्या 121। उनके आरंभिक दोनों नाटक इस सत्य से सीधा साक्षात्कार कराते हैं। इनमें पहली दोनों बार हिंदी नाटकों की भाषा नाटककार के अतिरिक्त मूह नाटकीय दृष्टि से निरर्थक शब्द जाल के आग्रह और साहित्यिक कला के लबादे से सहसा मुक्त हुई है। राकेश को प्रायः प्रसाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला कहा जाता रहा है। उदाहरणार्थ, उनकी भाषा काव्यात्मक प्रवाह लिए हुए साहित्यिक भाषा है, लेकिन सही मानों में प्रसाद के नाटकों में काव्यात्मकता, अलंकार प्रियता नाट्य भाषा को बांधती हुई लगती है। कहीं कहीं वह नाटक जैसी विधा की भाषा ही नहीं लगती। राकेश ने साहित्यिक भाषा को नाटक के अनुरूप ढाल लिया है, साहित्यिक भाषा को रंगमंच की भाषा के निकट कर लिया है। उनके दोनों नाटकों की भाषा केवल इस माने में साहित्यिक है कि वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है, लेकिन उतनी ही जितनी कि एक काल विशेष की पृष्ठभूमि रखने के कारण अपेक्षित यथार्थ भ्रम की सृष्टि के लिए आवश्यक है। नाटक की संस्कृत निष्ठ भाषा को लेकर आषाढ़ का एक दिन पर काफी आपत्तियां उठाई गईं, लेकिन यह सही है कि उस पृष्ठभूमि के लिए यह भाषा अनिवार्य है। सवाल उसके साहित्यिक होने का उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना रंगमंच की सार्थक भाषा होने का, और वह है, यद्यपि यही बात लहरों के राजहंस में है, उसमें कहीं पर भारी शब्द भी नहीं है। साहित्य होते हुए भी वह साहित्य नहीं लगती देखने सुनने दोनों में। राकेश स्वयं कहते हैं कि भाषा की यह सीमा कुछ शब्दों के चुनाव तक है। अगर अलग से कोई इस नाटक को भाषा से कुछ क्लिष्ट शब्द चुनना चाहे तो कह सकता है कि ऐसे बहुत से शब्द हैं, लेकिन नाट्य भाषा की सारी सृजनात्मकता उन शब्दों में नहीं, उनके प्रयोग में, समयानुकूल भावानुकूल ध्वनि संयोजन में है, उस भाषा के रचाव में है जो अभिनय की विविध भाव भंगिमाएं लिए हुए बड़ी उतार चढ़ाव भरी विभिन्न बदलते लय टोन से युक्त हैं और साहित्यिक और बोलचाल की भाषा से मिलकर बनी हुई है। अंबिका के मन की सारी मातृभावना चिंता गहरी वेदना और कालिदास के प्रति उसका सारा विक्षोभ वितृष्णा जिस तरह बराबर उसके संवादों में उभरती चलती है, वह नाट्य कला की ही विशेषता है। सभी पात्रों के व्यक्तित्व पर अगर बाहरी रूपरेखा न भी बताई जाए तो उनके संवादों की टोन लय से ही उनके व्यक्तित्व को अंदर से बाहर तक, उनकी सारी मनः स्थिति चिंतन को, सबकी अभिनय शैली को, उनके मुख से निकलने वाले शब्द समूह में, उनके संयोजन में आसानी से खोजा जा सकता है। यह चले आते हुए नाटक नाट्य भाषा से बहुत बड़ा अंतर है। हर पात्र के व्यक्तित्व के अनुरूप भाषा ढलती चलती है, टोन बदलता जाता है। यद्यपि भाषा वह है, कुछ स्थल देखने योग्य है, विशेषकर प्रथम अंक में कालिदास और दंतुल की टकराहट, एक ओर कवि का दृढ़ व्यक्तित्व अंतर्द्वंद, दूसरी ओर एक राजपुरुष का अधिकारी वर्ग का अहंकार, द्वंद और व्यंग, पीड़ा और दंभ, सरलता और छलना, शब्दों की ध्वनि से, भाषा की बुनावट से प्रकट होते चलते हैं।